दौला पुस्तक नववी लेक्चर नंबर 18 ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वर्चायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् सिद्धादद्धट्टमला विशुद्ध बुद्धिये लद्ध सौवत्था त्रिभुवन शिरसे हरया पश्यन्तु भडारया सौवे।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इस षटखंडागम का ये चौथा खंड है, इसका नाम है वेदना और उसमें कृति अनुयोग द्वार इस नवे पुस्तक का विषय है। और नवे पुस्तक के पृष्ठ संख्या 174 पर नाम है 174। यहाँ नयों की चर्चा चल रही है क्योंकि ग्रंथ का अवतार होता है, तो हमने देखा था वो उसमें पहले उपक्रम बताते हैं, उसके बाद उपक्रम के बाद क्या बताया था, प्रमाण नहीं, निक्षेप, अनुगम और नय, चार प्रकार बताए थे, उसमें से नयों की चर्चा चल रही है। यहाँ पर द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों की बात यहाँ हो रही है। अभी तक चालू था ना? हाँ, अभी हम पेज नंबर 174 पर है, सुनाई दे रहा है ना?
हाँ हाँ, एकदम सुनना ही बंद हो गया था।
अच्छा ठीक है,
नहीं उधर से बंद हो गया,
नहीं नहीं शायद वो रखते समय बंद हुआ होगा, बटन गलत दबा हुआ। हाँ देखते, देखो यहाँ पर पेज नंबर 174, इस नए की दृष्टि में ये रुजु सूत्र नय की बात चल रही है। अभी पहले हमने देखा था नयगम, संग्रह और व्यवहार, नय ये द्रव्यार्थिक नय है। उसके बाद ये पर्यायार्थिक नय के हमने चार भेद देखे थे, रुजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं गुप्त। अब यहाँ ये पेज नंबर 174 से ये चर्चा चल रही थी कि वर्तमान काल किसको कहना वगैरह, वो बात बताई थी वहां पर। और पेज नंबर 174 ये बात हुई थी अपनी कि कृष्ण काक वगैरह ये नए का विषय नहीं होता है, और वो क्यों नहीं होता उसकी भी बात यहाँ हमने पढ़ी थी। यानी विशेषण विशेष भाव नहीं होता, इस नए की दृष्टि में विशेषण और विशेष ये भाव नहीं हो सकता। अब इस नए की नीचे से दूसरी लाइन वहां से पढ़ेंगे, पेज नंबर 174 मिला ब्रह्मा?
हाँ,
रुजु सूत्र का वो विषय नहीं है ऐसा। हाँ अब कहते इस नए की दृष्टि में सामानाधिकरण्य, समान अधिकरण जिनका समान अधिकरण है, एक ही आधार है जिनका, इसलिए एक आधार में समान रूप से रहना भी नहीं है क्योंकि एक द्रव्य पर्यायों से भिन्न नहीं है, तथा पर्यायों को छोड़कर नित्य एक निरवय और समस्त अवयवों में रहने वाला द्रव्य पाया नहीं जाता। यानी वो द्रव्य पर्यायों से भिन्न तो नहीं है ये बात कह गए, अतः द्रव्य कोई अन्य वस्तु नहीं है, भिन्न भिन्न शक्ति युक्त पर्याय ही है। तथा उनका एक अधिकरण नहीं है, क्योंकि वे अपने में स्थित हैं। और भी इस नए की अपेक्षा विनाश किसी अन्य पदार्थ के निमित्त से नहीं होता, क्योंकि विनाश जाति हेतु होता है। उसके लिए 57 नंबर का श्लोक ऊपर पढ़ते हैं। जातिरेव हि भावानां निरोधे हेतुरिष्यते, यो जातश्च न चद्रस्तो नश्येत् पश्चात् सकेन वह। उसका अर्थ देखते नीचे, पदार्थों के विनाश में जाति कारण मानी जाती है, क्योंकि जो पदार्थ उत्पन्न होते ही नष्ट होता नष्ट नहीं होता फिर से जो पदार्थ उत्पन्न होते ही नष्ट नहीं होता तो पश्चात आपके मत में किसके द्वारा नष्ट होगा, अर्थात किसी के द्वारा नष्ट नहीं हो सकता। दूसरे यानी दूसरा पॉइंट, भाव अभाव का हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर घट से भी गधे के सिंगों के उत्पन्न होने का प्रसंग आवेगा। यानी जो नहीं है वो है, उससे वो नहीं है, वो जो पर्याय जो है वो पर्याय में से नहीं उत्पन्न होगी, या जो सत जो भाव रूप है उसमें से अभाव नहीं हो सकता, यानी अभाव उसमें से उत्पन्न नहीं हो सकता कहते। तथा पर वस्तु पर के निमित्त से नष्ट नहीं होती, वही ऊपर बताया था, क्योंकि वैसा होने पर की समीपता के अभाव में उसके अविनाश का प्रसंग आता है। यदि कहा जाए कि नाश न भी हो सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि नित्य होने पर अर्थ क्रिया का विरोध होता है। यह अर्थ क्रिया ने जो पर्याय जो बात है उसका जो परिणमन है उस संबंधी बात चल रही है। तो कहते हैं कि दूसरे के निमित्त से नष्ट नहीं होती, अगर दूसरे के निमित्त से नष्ट होने यानी उसका व्यय हो जावे, तो अगर दूसरे का निमित्त नहीं बना तो व्यय नहीं हो सकता, और ऐसा तो मान नहीं सकते, क्योंकि फिर वो पर्याय कायम वही कि वैसा का वैसा ही चलता रहेगा, तो अर्थ क्रिया नहीं होगी। यानी द्रव्य को सर्वथा कुटस्थ मानेंगे तो उसकी अर्थ क्रिया का अभाव हो जाएगा, यानी उसका परिणमन नहीं रहेगा। इस नए की दृष्टि में पलाल का दाह नहीं होता। ये पलाल के लिए पुआल लिखा है, उसका अर्थ होता है सूखा घास, स्ट्रॉ, हमने निकाला था डिक्शनरी में से शायद, क्योंकि पलाल और अग्नि के संबंध के, वो समबंध नहीं है, संबंध एक शब्द है, म आधा चाहिए, पलाल और अग्नि के संबंध के अनंतर ही पलाल की निरात्मता अर्थात शून्यता नहीं पाई जाती। द्वितीयादि क्षणों में पलाल की निरात्मता को करने वाला अग्नि का संबंध नहीं है, क्योंकि उसके होने पर पलाल की निरात्मता को उसके कार्य होने का प्रसंग आता है। क्या क्या न्याय बता रहे, देखो क्या कहना चाहते हैं। पलाल यानी वो तीन काम कहूँ ना, सुखी सुखी घास जो है, तो कहते कि अग्नि और उसका संयोग हुआ, उसका संबंध हुआ, तो उसके अनंतर ही पलाल की निरात्मता, निरात्मता ने पलाल रूप से नष्ट हो जाना, नहीं पाई जाती। अब द्वितीय आदि दूसरे तीसरे आदि क्षणों में पलाल की निरात्मता को करने वाला अग्नि का संबंध नहीं है। देखो पहले क्षण में वो नष्ट हो गया, अब वो दूसरे समय में वो नष्ट रूप से रहा ना, तो वहां तो कोई अग्नि नहीं था, क्योंकि उसके होने पर पलाल की निरात्मता को उसके कार्य होने का प्रसंग आता है। क्या कहना चाहते हैं, पलाल का नाश हुआ तो अग्नि ने किया, ऐसा अगर मानेंगे, देखो ये दलील अच्छी है, अग्नि ने अगर पलाल का नाश किया ऐसा मानेंगे, पहले ऊपर बताए थे ना वस्तु पर के निमित्त ने नष्ट नहीं होती, तो अग्नि ने पलाल का नाश किया ऐसा अगर मानेंगे तो दूसरे समय में भी पलाल है ही नहीं, उसका नाश है, तो दूसरे समय में अग्नि का संबंध नहीं है, फिर वो उसका अभाव कैसे होगा। फिर से देखते देखो सेकंड लाइन लास्ट में, द्वितीयादि क्षणों में पलाल की निरात्म ने वो तो नहीं रहा, वो नष्ट हो गया, पलाल रूप से नष्ट हो गया। अभी उसका वो तो जला हुआ रह गया पार्ट, उसकी बात नहीं। उसके नरात्मता को करने वाला अग्नि का संबंध नहीं है, क्योंकि उसके होने पर पलाल की निरात्मता को उसके कार्य होने का प्रसंग आता है, यानी अग्नि का कार्य होना चाहिए ऐसा उसका प्रसंग आ जाएगा। पलाल अवयवी का दाह नहीं होता, क्योंकि अवयवी की आपके मत में सत्ता ही नहीं है, यानी जो सामने से कुछ दलील कर रहे हैं उसके लिए ये सब हेतु दिए जाते हैं। न अवयव जलते हैं, क्योंकि
पलाल अवयवी का दाह नहीं होता।
जैसे द्रव्य और पर्याय, वैसे पलाल अवयवी का दाह नहीं होता, क्योंकि अवयवी की आपके मत में सत्ता ही नहीं है। देखो ये कहाँ से बात चल रही है,
रुजु सूत्र नहीं के बारे में ही बता रहे हैं।
बराबर है।
हाँ।
ये तो पर के निमित्त से नष्ट नहीं होती, उस संबंधी ये सब बात है। अगर नित्य हो तो अर्थ क्रिया का विरोध होता है, यदि पर्याय होती ही नहीं मानेंगे तो क्या प्रसंग आएगा, उसकी चर्चा चल रही है। यहाँ जयधोला की कुछ है, हम उसको पढ़ेंगे। मुझे वो नीचे से तीसरी पुस्तक देना, जयधोला की, लाल कलर की, उसमें कुछ अधिक बात होगी तो देखेंगे। वो उसमें ऊपर ही है, 85 के नीचे। हाँ, यहाँ फुटनोट किसके लिए लिया, न विनाशो अन्य तो जायते, उसके लिए नीचे उन्होंने रेफरेंस दिया है ना, 226। हमने इसमें कम पेजेस देखे थे ना,
190
तो उसके अलग था। रुजु सूत्र को यहाँ विषय निकालेंगे। यहाँ द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक के बारे में कुछ बातें यहाँ ये लिखी है, वो बाद में पढ़ती हूँ मैं, मैंने अपने को रुजु सूत्र देखना है ना। हाँ, 204 वहाँ से शुरू है। हाँ, एक मिनट, इसमें से जरा शुरुआत से मैं पढ़ती हूँ। पर्यार्थिक नय दो प्रकार का है, अर्थ नय और व्यंजन नय। उनमें से रुजु सूत्र अर्थनय है, यानी व्यंजन है वो शब्द वगैरह के बारे में। देखो तो अर्थनय और व्यंजनय में भेद क्या है, तो कहते वस्तु के स्वरूप में वस्तुगत धर्मों के भेद से भेद करने वाला अर्थनय है, और अभेद रूप से वस्तु ग्रहण करने वाला अर्थनय है। और व्यंजन नय किसको कहेंगे, वो वर्तमान काल से उपलक्षित वस्तु में वाचक शब्द के भेद से भेद करने वाला व्यंजन नय, जिसको हम शब्द नय में आगे देखेंगे। यानी वैसे अगर अर्थनय और व्यंजन नय भेद करेंगे तो वो द्रव्यार्थिक नय भी अर्थनय हो जाएगी, वो अलग टाइप का डिफरेंस है। अभी जो रुजु सूत्र ने किसको कहेंगे, जो एक समयवर्ती पर्याय को सूत्रित करता है, सूचित करता है, वो रुजु सूत्र ने है। वो पच्चमान वगैरह जो हमने कल बात देखी थी, प्रस्थ वगैरह की, वही सब इसमें बताए हैं। ये जो कहां स्थित पुरुष को बताए कहां से आए, तो वो कहते मैं कहीं से नहीं आया, वो सब चर्चा इसमें है। और कृष्ण काक के बदले यहाँ कृष्ण साड़ी ऐसा लिया है, वो भी हमने देखा था। अब इस नए की दृष्टि में विनाश निर्हेतुक है। अभी जिसकी हमने चर्चा चल रही है ना, दूसरे पदार्थ से नहीं होता, उसका कोई हेतु नहीं होता, ये निर्हेतुक कहते हैं। और इसके लिए स्पष्टीकरण बताते हैं। अभी वो लंबा चौड़ा है, उसमें प्रसज रूप अभाव और पर्युदास रूप अभाव ऐसे चर्चा की है उसके अंदर। हाँ हाँ, जय धवला, पुस्तक पहली, पेज नंबर 206 पर मैं अभी आ हूँ। धवला में तो 174 पर है, 174 175 है। अब ये जो अभी हमने देखा है ना, दूसरे से नाश नहीं होता, यानी इस नए की अपेक्षा विनाश निर्हेतुक है। इसको यहीं से पढ़ती हूँ तो ख्याल में आता है। देखो, इस नए की दृष्टि में विनाश निर्हेतुक है, जो अभी हमने पढ़ा उसी का यहाँ एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, अर्थात उसका कोई कारण नहीं है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, प्रसज्ज रूप अभाव, तो प्रसज्ज रूप अभाव का होता है मात्र अभाव, यानी वो वस्तु है ही नहीं है। वो प्रसज्ज रूप अभाव तो पर से उत्पन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो वस्तु ही नहीं है तो वो अभाव किसी के कारण उत्पन्न हुआ है कैसे कहेंगे। जैसे हम कहेंगे इस भूतल पर घट ही नहीं है, तो नहीं ही है तो किसी से उसका अभाव नहीं हुआ है। तो कहते कि प्रसज्ज रूप अभाव तो पर से उत्पन्न होने से, क्योंकि प्रसज्ज रूप अभाव में क्रिया के साथ निषेध वाचक नय का संबंध होता है, अर्थात इसमें मुद्गर घट का अभाव करता है, इसका आशय होता है मुद्गर घट को नहीं करता है। अतः जब मुद्गर प्रसज्ज रूप अभाव में कारक के प्रतिषेध अर्थात क्रिया के निषेध करने में ही व्यापृत रहता है, तब उसके घट का अभाव मानने में विरोध आता है। तात्पर्य है कि वह क्रिया का ही निषेध करता रहेगा, विनाश रूप अभाव का करता न कहेगा, यानी अभाव यानी वो क्रिया नहीं कर सकता, इस अर्थ में उसको ले लेते हैं। यदि कहा जाए ये अभाव पर से उत्पन्न होता है, तो वह घट से भिन्न उत्पन्न होता है कि अभिन्न, अभी उसमें बहुत चर्चा है क्या है। लास्ट में पढ़ते इसको। यानी ये उसमें उनका तात्पर्य ये है, ये अगर अभाव की उत्पत्ति पर से मानेंगे तो अन्य प्रकार से पर से घट की उत्पत्ति सिद्ध हुई, क्योंकि दोनों एक वस्तु है। क्योंकि हमने देखा ना, एक वस्तु का दूसरे वस्तु में कुछ संबंध ही नहीं है, वो उससे करती है तो उससे वो होती है, ऐसा भी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए रुजु सूत्र नय में विनाश जो है वो निर्हेतुक है, इतना उनको सिद्ध करना है। इस नय की अपेक्षा से वो बात हो रही है। अभी यहाँ वो पलाल और अग्नि का हेतु दिया है, वहां कुछ अन्य हेतु दिया है। वो विशेषण विशेष भाव नहीं बनता, वो भी बात इसमें आ गई है। जो समानाधिकरण बताया था उसमें ये भी बात होती है कि कोई इस दृष्टि में कोई किसी के समान नहीं है, क्योंकि दो को सर्वथा समान मान लेने पर दोनों में एकत्व की आपत्ति आती है, एक हो जाएंगे। अभी कौन सा पढ़ रहे थे हम?
ये 175 का लास्ट।
175 का लास्ट अवयव और अवयव की बात होती थी ना वहां पर।
नीचे से तीसरी लाइन।
हाँ, ये जो अभी निरहेतुक लिखा ना, तो उसके लिए बता रहे हैं कि इस नय की दृष्टि से उत्पाद और विनाश दोनों निरहोतिक है, निरहेतुक है, क्योंकि उत्पाद और विनाश जब वस्तु के स्वभाव है तो वे निरहेतुक होने ही चाहिए। वो जो उसकी बात न देवम किसके लिए वो एक नंबर डाला था उन्होंने ऊपर, न विनाशो अन्य तो जायते, उसके लिए डाला था ना, यानी दुपर से वो विनाश नहीं होता क्योंकि वो उसका स्वभाव है, उत्पाद व्यय और ध्रुवता स्वभाव है, इसलिए वो विनाश भी पर से नहीं होता, स्वयं से होता है। उसके लिए उन्होंने अग्नि और वो तिनके का उदाहरण दिया है। इसमें बहुत विस्तार से समझाया है, मैं उसमें से मुख्य मुख्य को पढ़ रही हूँ। यानी केवल वर्तमान पर्याय को वो स्वीकार करता है, पूरे द्रव्य को नहीं, इसलिए वो अवयव अवयवी वगैरह की बात उन्होंने उठाई वहां पर। चलो अभी अपना ही जो है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके हाथ में पुस्तकें तो है ही नहीं है, जो पूरा ही पढ़ेंगे तो ही उसका वहां से हाँ भाव भाषण हो जाएगा। हम नीचे से तीसरी लाइन पढ़ रहे थे, पलाल अवयवी का दाह नहीं होता। पलाल अवयवी अगर मानेंगे तो उसका दाह नहीं होता द्रव्य का, क्योंकि अवयवी की आपके मत में सत्ता ही नहीं है, न अवयव जलते हैं क्योंकि स्वयं निरवय होने से उनका भी असत्व है। यानी जो कोई सामने वाला जो दलील कर रहा है उसके लिए वो ये सारे बता रहे हैं। यदि कहा जाए कि पलाल की उत्पत्ति के क्षण में ही अग्नि का संबंध हो जाता है अतः वह जल सकता है, सो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अग्नि का संबंध होने से वह उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा। समझ में आते ना, उसी क्षण अगर जलता है तो वो अगर अग्नि के संयोग से उसका अभाव मानते हैं तो उसके अग्नि के संयोग में उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा। यदि उत्पत्ति के उत्तर क्षण में अग्नि का संबंध स्वीकार किया जाए तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति के द्वितीय क्षण में पलाल की सत्ता नष्ट हो जाने से असत्ता के साथ अग्नि संबंध का विरोध है। ये अभी क्लियर हो रहा है। देखो पर्याय एक समय के लिए है, दूसरे समय में वो स्वयं नष्ट हो जाती है। अब कहेंगे जिस समय वो उत्पाद हुआ उसी समय अगर अग्नि मानेंगे आप तो वो तो उसके सद्भाव में तो उत्पन्न ही नहीं होगा। एक बात आप कहेंगे दूसरे समय में अग्नि का संयोग था इसलिए वो नष्ट हुआ, तो दूसरे समय में वो था ही नहीं क्योंकि पर्याय स्वयं नष्ट हो गई थी। समझ में ये दलील? तो असत्ता के साथ अग्नि संबंध हुआ ऐसा मानना पड़ेगा। दूसरे, जो पलाल है वही नहीं जलता है, क्योंकि जब जल गया तो नहीं है कहेंगे ना उसको, क्योंकि उसमें अग्नि संबंध जनित अन्य अतिशय विशेष का अभाव है, यानी अग्नि के संबंध होते हुए भी वो नहीं जलता ऐसा मानेंगे तो वो तो कुछ बात अलग हो जाएगी। अथवा यदि उसमें अन्य अतिशय विशेष का सद्भाव है ऐसा स्वीकार करने पर भी तो वह पलाल नहीं है, क्योंकि उसने अन्य स्वरूप प्राप्त कर लिया है, यानी आप मानेंगे तो वो जल नहीं सकता है, वो कुछ अन्य है, तो उसको पलाल नहीं कहेंगे। इस नय की अपेक्षा शुक्ल कृष्ण होता है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शुक्ल और कृष्ण दोनों पर्याय भिन्न भिन्न अपने अपने काल में रहने वाली है। शुक्ल कृष्ण होता है ना, जैसे हमारे हाथ में पेपर है, कागज है, और वो जल गया तो दूसरे समय वो काला हो गया या अन्य किसी कारण से वो कलर चेंज हो गया, मान लेते हैं तो कहते वो तो दूसरे भिन्न भिन्न पर्याय में वो वर्ण पलट गए ना, पहले शो शुक्ल था वही काला हो गया, ऐसा हम कहेंगे तो रुजसूत्र नय को वो माने नहीं है, क्योंकि दो भिन्न भिन्न काल में वर्तने वाली पर्यायों को वो विषय करता है, तो ये रुजसूत्र का नय का विषय नहीं है। इसलिए कहते वो पर्याय अपने अपने काल में रहने वाली, अतः वर्तमान उत्पन्न होने वाली कृष्ण पर्याय में नष्ट हुई पूर्व क्षण वाली शुक्ल पर्याय का संबंध नहीं बन सकता, यानी दो भिन्न भिन्न पर्यायों का कोई संबंध यहाँ नहीं लगा सकते, ये यहाँ का विषय है। वर्तमान पर्याय अगर कृष्ण मानेंगे तो पूर्व शुक्ल वर्ण के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार रुजुसूत्र नय के स्वरूप का निरूपण किया। अभी शब्द नय की बात करेंगे, जो शपति अर्थात अर्थ को बुलाता है। अच्छा, शब्द कैसे तैयार हुआ? जो शपति अर्थात अर्थ को बुलाता है या उसका ज्ञान कराता है वह शब्द नय है। यह नय, देखो वहां तो वर्तमान पर्याय को जानने वाला वो रुजु सूत्र हुआ, अब यहाँ क्या कह रहे हैं? जो अर्थ को कहने वाला वो शब्द नय है। यह नय लिंग वचन काल कारक पुरुष और उपग्रह के व्यभिचार को दूर करने वाला है, यानी अन्य अन्य लिंग एक अर्थ में नहीं हम यूज नहीं कर सकते, वचन में भी यानी कोई दोष नहीं होने चाहिए, ये दोषों को स्वीकार नहीं कर सकता। इनमें पहले लिंग व्यभिचार कहा जाता है, ये जो शब्द बताए ना लिंग वचन काल कारक पुरुष उपग्रह, इनमें क्या दोष कैसे हो सकते उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। पहले लिंग व्यभिचार कहा जाता है, स्त्रीलिंग में पुल्लिंग का कथन करना लिंग व्यभिचार है, जैसे तारका स्वाति। यहाँ स्त्रीलिंग तारका शब्द के साथ पुल्लिंग स्वाति शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः यह लिंग व्यभिचार है। पुल्लिंग में स्त्रीलिंग का कथन करना जैसे अवगमो विद्या। यहाँ पुल्लिंग अवगम शब्द के साथ अवगम यानी ज्ञान, स्त्रीलिंग विद्या शब्द का प्रयोग है, यानी दोनों एक ही अर्थ में है परंतु उनका लिंग डिफरेंट है, इसलिए वो एक साथ उसको हम नहीं बता सकते, वो समान अर्थ में हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें लिंग का भेद है। स्त्रीलिंग में नपुसक लिंग का कथन कर जैसे वीणा आतोद्यम, यानी जैसे वीणा ये वाद्य है तो वाद्य तो नपुसक लिंग है शब्द है और वीणा तो स्त्रीलिंगी शब्द है, यहाँ स्त्रीलिंग वीणा के लिए नपुसक लिंग आतोद्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नपुसक लिंग में स्त्रीलिंग का कथन करना जैसे आयुधम शक्ति ही, तो आयुध और शक्ति एक अर्थ में यूज करना ये यहाँ नहीं संभव, यहाँ नपुसक लिंग आयुध के लिए स्त्रीलिंग शक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। पुल्लिंग में नपुसक लिंग का कथन करना जैसे पटो वस्त्रम, देखो दोनों ही एक अर्थ में है, परंतु पट ये पुल्लिंग शब्द है और वस्त्रम ये नपुसकलिंग है। तो पटो वस्त्रम, यहाँ पुल्लिंग पट के साथ वस्त्रम ऐसे नपुसकलिंग वस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया। एक ही अर्थ में जब दो अलग अलग शब्द आते हैं परंतु उनका अगर लिंग डिफरेंट है तो इसको ये शब्द नहीं को स्वीकार नहीं है, ये कहना चाहते। नपुसक लिंग में पुल्लिंग का कथन करना, जैसे द्रव्यम परशु हो, यहाँ नपुसक लिंग द्रव्य शब्द के साथ पुल्लिंग परशु शब्द का प्रयोग किया गया है, यह सब लिंग व्यभिचार है। वो भी आता है ना कुटुंब, इसके लिए आता है ना, कौन सा वो शब्द है स्त्री के लिए, कौन सा बार दारा ने नपुसक लिंग शब्द कलत्र, कलत्र शब्द नपुसक लिंगी है और वो स्त्री शब्द के साथ मैंने उसको यूज, जैसे हम ना पुत्र कलत्र, तो कलत्र स्त्रीलिंगी शब्द है, तो भार्या कलत्र ऐसे एक साथ हम नहीं कह सकते उसको, भार्या स्त्रीलिंगी है और कलत्र नपुसक लिंगी है। मराठी में भी ऐसा आता है ना, यानी पत्नी के लिए ऐसा कहने में आता है, हमारा कुटुंब है, ये हमसे कुटुंब है, कुटुंब है पूरी फैमिली नहीं, अकेले पत्नी के लिए कुटुंब है ऐसा कहने की पद्धति है, यानी वो कैसा हुआ वो नपुसक लिंग शब्द है। अब संख्या व्यभिचार, यानी एक ही अर्थ में या एक साथ जब शब्द वापरते हैं तो उसमें लिंग वाला दोष नहीं, डिफरेंट लिंग नहीं होने चाहिए। अब कहते हैं संख्या द्विजी द्विजी हो तो भी वो एक साथ नहीं यूज कर सकते, एक वचन के स्थान में द्विवचन का प्रयोग करना, जैसे नक्षत्रम पुनर्वसु, यहाँ एक वचन नक्षत्रम के साथ पुनर्वसु ऐसे द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अब एक वचन के स्थान में बहुवचन का प्रयोग, जैसे नक्षत्रम शतभिषजः, यहाँ एक वचन नक्षत्रम के साथ शतभिषजः ऐसे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। द्विवचन के स्थान में एक वचन का प्रयोग, जैसे गोदौ ग्रामः, यहाँ गोदौ वचन के साथ ग्रामः ऐसे एक वचन का प्रयोग किया गया है। द्विवचन के स्थान में बहुवचन का प्रयोग, जैसे पुनर्वसु पंचतारकाः, यहाँ पुनर्वसु इस द्विवचन के साथ पंचतारकाः ऐसे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। बहुवचन के स्थान में एक वचन का प्रयोग, जैसे आमराः वनम्, यहाँ आमराः बहुवचन के साथ वनम् ऐसे एक वचन का प्रयोग किया गया है। बहुवचन के स्थान में द्विवचन का प्रयोग, जैसे देव मनुष्याः, मनुष्य नहीं मनुष्याः उभौ राशि, अर्थात देव एवं मनुष्य ये दो राशियां हैं, ऊपर लिखा है ना प्राकृत में से देव मनुष्याः, देव मनुष्य इस प्रकार बहुवचन के साथ उभौ राशि ऐसे द्विवचन का प्रयोग किया गया है। यह संख्या व्यभिचार है। अब काल व्यभिचार, विवक्षित किसी एक काल के स्थान में दूसरे काल का प्रयोग करना काल व्यभिचार है, जैसे वर्तमान के स्थान पर भूतकाल का प्रयोग करना वगैरह वगैरह। जैसे विश्व दृष्ट्वा अस्य पुत्रो जनिता, अर्थात जिसने विश्व को देख लिया है ऐसा इसके पुत्र होगा, होगा है ना, और जिसने देख लिया है, देख लिया है वो तो भूतकाल हो गया। यहाँ भविष्यत्कालीन जनिता क्रिया के साथ भूतकालीन क्रिया के द्योतक विश्व दृष्ट्वा कर्तृपद का प्रयोग किया गया है। भावी कृत्यम आसित, आगे होने वाला कार्य हो गया। यह भूतकालीन आसित क्रिया के साथ भविष्यतकालीन क्रिया के द्योतक भावी पद का कृत्य के विशेषण रूप से प्रयोग किया गया है। इसलिए उक्त दोनों काल व्यभिचार के उदाहरण हैं। यानी सामान्य से उसका ऐसा यूज होता है लौकिक में, परंतु शब्द ने को वो स्वीकार नहीं, ये कहना चाहते। एक कारक के स्थान में दूसरे कारक का प्रयोग करना साधन व्यभिचार है। ये कारक समझते हैं, जिसको हम विभक्ति कहते हैं, षटकारक। वो षटकारक है नहीं, ये तो कारक है नहीं, वो तो व्याकरण की अपेक्षा ये कारक की समझना। वो षटकारक पर्याय के होते उसकी बात नहीं है, जैसे कर्ता कर्म वगैरह जो कारक है, करण संप्रदान अपादान, तो कहते एक स्थान में दूसरे का प्रयोग करना, इसको कहते साधन में विचार। जैसे ग्रामम अधिशेते, अर्थात गांव में सोता है। ग्रामम कहा, ग्रामे नहीं कहा, यहाँ ग्रामे अधिकरण कारक के स्थान में ग्रामम ऐसे कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। यानी सप्तमी विभक्ति के बदले द्वितीय विभक्ति वापरी उन्होंने, अतः यह साधन में विचार है। कल हमने वो पंचाशिकाय में भी पढ़ा था ना, वो सप्तमी अंत था, उसको तृतीय करके उसका अर्थ लगाया था। उपशमे औदय के ऐसे सब बात कही, और परिणामे के बदले उन्होंने परिणामे न ऐसा कुछ नहीं, तृतीय विभक्ति लगाई उन्होंने। परिणामे कहने के बदले उन्होंने क्या लगाया था उसमें, सर्वत्र सप्तमी विभक्ति की थी, और इसकी विभक्ति अलग थी परिणाम वाली, पारिणामिक भाव की, तो उन्होंने उसको सही करके उसका अर्थ किया था, परिणामे न युक्त ऐसा किया था, परिणामे ऐसा हुआ था उसको परिणामे न युक्त, यानी उदय के न उपशमे न ऐसा अलग अलग था, पांच भावों की चर्चा चल रही है वहां पर, उससे युक्त जीव ऐसी बात है, तो परिणाम के लिए सप्तमी लगाई और बाकी सबके लिए तृतीय लगाई, तो उसको साधन व्यभिचार कहेंगे हम। अब पुरुष व्यभिचार, पुरुष समझते ना, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष जो होंगे ना, एक पुरुष के स्थान में दूसरे पुरुष का प्रयोग करना, यानी करने का नाम पुरुष व्यभिचार है। जैसे ए ही मन्ये रथे न यास्यसि, नहीं यास्यसि यातस्ते पिता, अर्थात आओ तुम समझते हो कि मैं रथ से जाऊंगा, मन्ये रथे न यास्यसि, पर तुम नहीं आओगे, पर तुम नहीं जाओगे, नहीं ना, तुम समझते हो कि मैं रथ से जाऊंगा, कि तुम के स्थान पर इन्हें तुम समझते हो कि मैं इन्हें, वो अपने लिए मैं शब्द यूज कर रहा है, पर तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे पिता चले गए। यहां मन्य से मध्यम पुरुष के स्थान में मन्य इस प्रकार उत्तम पुरुष का प्रयोग, ये तुम ऐसा मानोगे ऐसा क्या ना, तुम समझते हो कि मैं रथ से जाऊंगा, तो और यास्यामि इस उत्तम पुरुष के स्थान में यास्यसि ऐसे मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया है। अतएव यह पुरुष व्यभिचार है। अब ना ही आपको संस्कृत का व्याकरण मालूम है क्योंकि वो गच्छामी वगैरह कुछ मालूम हो गए तो ये समझ में आएगा। तो चले जाओ आगे चलते, यानी हम कहते हैं मैं, ये जो प्रथम पुरुष कैसा होता है, मी अम्मी, यानी मैं और हम, द्वितीय पुरुष तू, तू तुम्ही वगैरह, तो उसके लिए जो इसमें तुम या आप जो से, और तीसरे थर्ड पर्सन के लिए वो आप वगैरह आते हैं। इस तरह से ये पुरुष में जो अलग अलग एक के साथ दूसरे का यूज करना, हाँ उसको कहेंगे पुरुष व्यभिचार। उपसर्ग के संबंध से परस्मय पद के स्थान में आत्मनेपद और आत्मनेपद के स्थान में परस्मय पद का प्रयोग करना उपग्रह व्यभिचार है। देखो उपग्रह ने वो धातु के साथ कोई शब्द जुड़ता है, जैसे मोद के साथ प्र जोड़ना प्रमोद हो जाता है, ऐसे यहाँ लिखा है देखो, जैसे रमते, ऐसे आत्मने पद के स्थान में वी उपसर्ग के संबंध से विरमति, इस प्रकार परस्मय पद का प्रयोग। तिष्ठति परस्मय पद के स्थान में सम उपसर्ग के संयोग से संतिष्ठते, ऐसे आत्मने पद का प्रयोग। और विशति परस्मय पद के स्थान में नी उपसर्ग के योग से निविशते, इस प्रकार आत्मने पद का प्रयोग किया गया है, यह उपग्रह व्यभिचार है। आपको एक ऐसा याद होगा तिष्ठति जैसा होता है ना, यहाँ संतिष्ठते कहा, ये हमारा समयसार में भी श्लोक है, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, प्रतिष्ठति नहीं आता है, तिष्ठ धातु होगा तो तिष्ठति कहेंगे, प्र उपसर्ग लगा प्रतिष्ठते हो जाता है, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, यही संतिष्ठते शब्द यह किया। ये आत्मने पद और परस्मय पद उसका जो धातु का रूप होता है वो अलग अलग हो जाता है, वो उसके बदले नहीं यूज कर सकते, इतना ही कहना है उनको। पूर्वोक्त लिंगादि व्यभिचार के अतिरिक्त और भी जो व्यभिचार है वे सब शब्द की दृष्टि में उचित नहीं है, यानी ये शब्द उन्हीं शब्दों को इकट्ठा यूज कर सकता है कि जो उसमें वो लिंग दोष व्यभिचार है दोष संख्या का पुरुष का साधन यानी वो कारकों का वगैरह न हो, अन्य भी कोई दोष हो तो वो नहीं स्वीकार करता, क्योंकि अन्य अर्थ वाले शब्द का अन्य अर्थ वाले शब्द के साथ संबंध नहीं हो सकता। इस कारण जैसा लिंग हो जैसा वचन हो जैसा साधन आदि हो वैसा व्यभिचार से रहित प्रयोग करना चाहिए, यह इस नये का मंतव्य है। इस प्रकार शब्द नये का स्वरूप कहा गया, यानी ज्यादा वो स्पेसिफिकली उसको एक्सेप्ट करता है, ये उसका अर्थ है। 179 पृष्ठ शब्द भेद से जो नाना अर्थों में रूढ़ हो, अर्थात जो शब्द के भेद से अर्थ के भेद को स्वीकार करता हो, वह समविरूढ़ नय है। देखो ये शब्द कैसे तैयार होते हैं उसको कहेंगे शब्द भेद, यानी एक ही व्यक्ति के लिए कहो, एक ही चीज के लिए अलग अलग शब्द जब होते हैं तो उसका निरुक्ति अर्थ जो है, शब्दों का जो अर्थ है वो अलग अलग हो जाता है, तो उसको वो समभिरूढ़ नय सबको नहीं स्वीकार करेगा। शब्द नय ने तो स्वीकार कर दिया, अब यहाँ पढ़ाएंगे दिखाएंगे। जैसे यानी जो अलग अलग शब्दों से अलग अलग भेद को वो उसको भेद ही करता है, वो उनको इकट्ठा नहीं यूज करता, इकट्ठा नहीं स्वीकार करता, उसको जुदा करेंगे, यहाँ उदाहरण पढ़ेंगे तो ख्याल में जाएगा। जैसे ईंधन अर्थात ऐश्वर्य उपभोग रूप क्रिया के संयोग से इंद्र, इंद्र क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ऐश्वर्यवान है, ऐश्वर्य का उपभोग करता है, वो ईंधन शब्द से शुरू हुआ इसलिए उसको इंद्र कहते हैं। उसी जीव को सकना क्रिया के संयोग से शक्र कहते हैं। वो शक्रेंद्र शब्द आता है ना, और पुरों के विभाग करने रूप क्रिया के संयोग से पुरंदर कहते हैं। यानी इंद्र, शक्र, पुरंदर एकार्थवाची शब्द है, परंतु समभिरूढ़ उसको जुदा जुदा ग्रहण करेगा क्योंकि उसका अर्थ जुदा होता है। हा? सकना यानी उसके सामर्थ्य होगा, सकना सकना क्यों ऊपर क्या लिखा है, इंद्रनाद इंद्र, शकनाद शकना कहा हुआ, शकनाद शक्र, शक्यता ने उसकी कितनी क्या सामर्थ्य है, ऐसे होना चाहिए उसको। वो तो पूरा जम्बूद भी पलटने की सामर्थ्य है, ये शक्यता उसकी शक्ति जो है, शकना कहने शक्ति, सकना क्रिया ने शक्ति, उसकी शक्ति यानी क्या कर सकता है। हाँ उसको शक्र कहे, शक्रेंद्र कहते। इस प्रकार एक अर्थ का एक शब्द से परिज्ञान होने से अथवा अन्य अर्थक शब्द का उस अर्थ में सामर्थ्य न होने से पर्याय शब्दों का प्रयोग व्यर्थ है। पर्यायवाची शब्द, पर्याय शब्द ने पर्यायवाची शब्द, यानी एक ही अर्थ में जो अनेक शब्द आते हैं उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी एकार्थक शब्द है। परंतु उसको भले हम एकार्थक कहते हैं परंतु वो एक ही अर्थ नहीं उससे ध्वनित होता है, क्योंकि पुरंदर जब कहेंगे तो पुरंदर शब्द से वो शक्र शब्द का अर्थ नहीं घटित होता है, इसलिए वो एक साथ एक ही अर्थ में उसको यूज नहीं कर सकते। इसलिए नाना अर्थों में रूढ़ होना इस नए की दृष्टि में उचित है। शंका, अभी बड़ी लंबी चौड़ी शंका है। शब्द वस्तु का धर्म नहीं है क्योंकि उसका वस्तु से भेद है, और यदि उसका वस्तु से अभेद माना जाए तो यह संभव नहीं है क्योंकि वस्तु वाच्य है और शब्द वाचक है। इसका अर्थ समझते हैं, हमने पेंसिल कहा, पेंसिल ये शब्द हुआ, वो किसको बताता है, ये मेरे हाथ में जो है चीज उसको बताता है, तो जिसको बता रहे हैं ये हाथ में जो एक्चुअल पेंसिल पदार्थ है वो हुआ वाच्य, और पेंसिल शब्द है वो हुआ वाचक। ये तो अभी शंका चल रही है, पहले में वो प्रस्तुत कहके, यानी वाच्य और वाचक दो भिन्न है। वस्तु भिन्न इंद्रिय से ग्राह्य है और शब्द भिन्न इंद्रिय से ग्राह्य है। हमने अभी जो पेंसिल जो कहा वो आपको दिख रही है, और शब्द है वो कर्णेन्द्रिय से ग्राह्य है। वस्तु के कारण भिन्न है और शब्द के कारण भिन्न है, वो भिन्न कारणों से उत्पन्न हुए है। जैसे हम कहेंगे नहीं पेंसिल, वो तो मान लेते हैं आहार वर्गना से बनी है और शब्द भाषा वर्गना से बने हैं, तो कारण भिन्न है। वस्तु की अर्थक्रिया भिन्न है, अर्थक्रिया क्या अर्थ होते उसके प्रयोजनभूत कार्य, और शब्द की अर्थक्रिया भिन्न है। शब्द उपाय है, वस्तु उपेय है, उपेय है ना जिसके लिए उपाय किया, यानी उसके द्वारा हम वस्तु को जानते हैं, तथा वस्तु त्वक इंद्रिय से ग्राह्य है। ये त्वक इंद्रिय क्या होता है प्रेरणा बेन, बोलो ब्रह्मा, ये कॉमन सेंस है, कौन बताना चाहते हैं? मयंक भाई, ये त्वचा इंद्रिय त्वक त्वक स्पर्शन इंद्रिय से ग्राह्य है, और शब्द त्वक इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है। समझ में आती है बात? देखो कोई भी जो इंद्रियों के द्वारा जो ग्राह्य है, त्वक है ना त्वचा,
वस्तु स्पर्शन इंद्रिय से ग्राह्य होती है,
जैसे हमने भी देखा, हमने पकड़ा है पेंसिल, हमने छू कर देखा इसको, और शब्द त्व इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है। एक मिनट, ऊपर क्या लिखा है? पहले तो भिन्न इंद्रिय से ग्राह्य, भिन्न इंद्रिय से ग्राह्य बताया, हाँ। आगे देखते ना, त्वग इंद्रिय ग्राह्य अग्राह्यत्वात्, यही लिखा है त्वग इंद्रिय। ऊपर भिन्न इंद्रिय लिखा था, यहाँ त्वग इंद्रिय लिखा है। और शब्द त्वग इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है। अभी मुझे तो ऐसा लगता है त्वग यानी वो त्वचा वाली होनी चाहिए। अभी तो ये तो उन्होंने शंकाकार की शंका है उसको। आगे पढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त उन दोनों में अभेद मानने पर छुरा और मोदक शब्दों का उच्चारण करने पर क्रम से मुख के कटने और पूर्ण होने का प्रसंग आता है। अतः दोनों में सामानाधिकरण न होने से अभेद नहीं हो सकता। कदाचित शब्द और वस्तु में विशेषण विशेष भाव मानकर यदि शब्द को वस्तु का धर्म स्वीकार करे तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि विशेष्य से भिन्न विशेषण नहीं होता। कारण के इसे मानने में अव्यवस्था की आपत्ति आती है। अतएव शब्द वस्तु का धर्म न होने से उसके भेद से अर्थ का भेद नहीं हो सकता। ये लंबी चौड़ी उन्होंने पहले वो भिन्न है ऐसा स्वीकार किया है, इसलिए वो शब्दों के वो वस्तु का धर्म ही नहीं है, तो शब्दों के भेद से वस्तु में भेद कैसे हो सकते हैं, उनका प्रश्न है। आखिर ये कहाँ पर आ गए वो? शब्द तो होते ही जुदे है, वस्तु जुदी है, अन्य अन्य इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है। ऐसे करने पर ऊपर जो बताया था कि पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकते, एक ही अर्थ में दो अलग अलग शब्द हो गए तो वस्तु भिन्न हो जाती है, तो कहते ये कैसे संभव है, ये इनका प्रश्न है। नहीं नहीं नहीं, ये शंकाकार इसलिए कह रहा है कि समय भी रूढ़ क्या करता है, एक ही चीज के लिए जो अन्य अन्य शब्द आते हैं तो वो उसी उसके द्वारा वही चीज नहीं घटित होती, वो भिन्न भिन्न अर्थ में घटित होती है। जैसे कृष्ण जो नाम है उसके लिए अन्य भी शब्द आते हैं ना, कौन से? मुरारी है, हाँ वो गिरिधर है, और मुरलीधर है, तो उसके अर्थ जुदे हैं। मुरलीधर जब वो बजा रहा है तो उसको यानी वो मुरलीधर वाला वो क्रिया को सूचित करता है। मुरारी यानी वो तो राक्षस का नाश किया, उसको मुरारी कहा। गिरिधर ने पर्वत को उठाने वाला वो गिरिधर, इनके अर्थ जुदे जुदे होते हैं, ये इनको कहना है। ऊपर बताया ना शक्र इंद्र और पुरंदर, ये तीनों ही एक वक्य के लिए आता है, स्वधर्म इंद्र के लिए मान लेते हैं, परंतु इनको वो स्वीकार नहीं है, समभिरूढ़ को वो स्वीकार नहीं है। नहीं, समभिरूढ़ वो दूसरा उसको जुदा जुदा स्वीकार करता है। शब्द नय ने तो उनको स्वीकार किया। अब जैसे ये इंद्र है कि पुरंदर है शक्र है सब पुल्लिंगी है, शब्द एक वचनी है, उनको तो स्वीकार हुआ, परंतु समभिरूढ़ मैंने बोला ना और आगे फिल्टर लगाता है, वो इसको भी स्वीकार नहीं करेगा। उसके मत में वो एक ही अर्थ में अनेक शब्द नहीं हो सकते, उसका कोई ना कोई जुदा जुदा अर्थ होता है। शंका करके यही शंका है कि वो शब्द ऐसे ही भिन्न ही है पदार्थ से, तो उसके कारण पदार्थों में भेद कैसे हो सकते हैं, ये उनकी शंका है। उसके लिए नहीं, उन्होंने बहुत लंबे चौड़े भिन्नता के लिए प्रस्तुत किए हैं नियम समाधान। यह कोई दोष नहीं है, विशेष्य से भिन्न भी वस्त्राभरणादिकों के विशेषणता पाई जाती है। और विशेष्य से विशेषण को सर्वथा एक मानने पर उनमें व्यवच्छेद्य व्यवच्छेदक भाव मानना भी योग्य नहीं कहा जाता, क्योंकि अभेद मानने पर उसका विरोध है। यानी ये क्या कहते हैं कि जो वस्तु के विशेषण हम बनाते हैं तो सर्वथा अभेद नहीं होते। ऊपर शंकाकार ने पूछा था विशेष्य से भिन्न विशेषण नहीं होता, ऐसा कहा था। तो यहाँ कहते हैं सर्वथा उसको अभेद नहीं माना जा सकता। यानी सर्वथा एक मानने पर क्या होगा, व्यवच्छेद्य व्यवच्छेदक भाव मानना योग्य नहीं कहा जा सकता। उसका व्यवच्छेद मैंने नाश क्या कहेंगे, अभेद मानने पर उसका विरोध है। व्यवच्छेदक है ना, वो बताने वाला होगा शायद व्यवच्छेदक। शब्द अपने से भिन्न समस्त पदार्थों का व्यवच्छेदक नहीं हो सकता, यही बात है ना। सभी शब्द जो है सभी पदार्थों को बताने वाला नहीं, क्योंकि उसमें वैसी योग्यता नहीं है। किंतु योग्य शब्द योग्य अर्थ का व्यवच्छेद होता है, अतएव अति प्रसंग नहीं आता। समझ में ना, योग्य शब्द योग्य अर्थ का यानी पदार्थ का व्यवच्छेदक होता है, यानी बताने वाला होता है। ऊपर दो शब्द दो कहाँ है, एवं भूत के लिए। शंका, शब्द और अर्थ के योग्यता कहाँ से आती। ऊपर बताया ना, योग्य शब्द योग्य अर्थ का व्यवच्छेदक होता है, कहते उनके योग्यता कहाँ से आती है। समाधान, स्व और पर से उनके योग्यता आती है। सर्वथा, अन्य से ही उसकी उत्पत्ति होती हो ऐसा है नहीं, क्योंकि स्वयं वर्तने वाले पदार्थों की सहायता से वर्तते हुए बाह्य पदार्थ पाए जाते हैं। सर्वथा अन्य से उत्पत्ति यानी जिसको हम कहें उपादान कारण और निमित्त कारण, तो सर्वथा बाह्य पदार्थों से होते ऐसे नहीं है। तो स्वयं वर्तने वाले यानी स्वयं परिणमने वाले या स्वयं विद्यमान वाले, वर्तने वाले ने परिणाम भी नहीं लेना है, स्वयं विद्यमान पदार्थों की सहायता से पाए जाने वाले बाह्य पदार्थ होते हैं। दूसरे, शब्दों के दो प्रकार होने पर उनकी शक्तियों को एक मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि भिन्न काल में उत्पन्न व भिन्न उपादान एवं भिन्न आधार वाली शब्द शक्तियों के अभिन्न होने का विरोध है। उनमें सादृश्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने पर एकता की आपत्ति आती है, यानी वो शब्द एक हो जाएंगे, दो भिन्न नहीं रहेंगे। इस कारण वाचक के भेद से वाच्य भेद भी अवश्य होना चाहिए। समझ में आती ना, जो जहाँ अलग अलग शब्द वापरे जाते हैं उसमें वाच्य जो पदार्थ है उसमें कोई तो भेद अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वो दो अलग अलग शब्द क्यों वापरे, क्योंकि भिन्न काल में उसकी कोई अलग शक्ति बतानी हो या द्रव्य की जो अलग विशेषता बतानी हो, इस कारण वो तो उसको अलग अलग शब्द आते हैं, एक ही पदार्थ के लिए अलग अलग शब्द इसीलिए आते हैं। अतएव शब्द भेद से नाना अर्थों में जो रूढ़ है वह समभी रूढ़ नय है, यह सिद्ध हुआ। क्या कहते हैं, यानी उसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग शब्दों के द्वारा वो पदार्थ के अलग अलग अर्थ होते हैं, ये यहाँ कहना चाहते हैं। इस प्रकार समभी रूढ़ नय का स्वरूप कहा गया है। जो शब्दगत वर्णों के भेद से अर्थ का। वर्ण ने यहाँ शब्दगत वर्ण ने तो अक्षर जो है, जो कोई अलग अलग शब्द आते हैं उसके भेद से अर्थ का, और गौ आदि अर्थ के भेद से गो आदि शब्द का भेदक है वह एवं भूत ने है। क्रिया का भेद होने पर एवं भूत नय अर्थ का नहीं है, क्योंकि शब्द नय के अंतर्गत एवं भूत नय के अर्थ नय होने का विरोध है। देखो क्या कहना चाहते हैं, अभी एवं भूत नय ने उस क्रिया से परिणत होना चाहिए, जो गमन कर रहा है उसको गौ कहेंगे, तो बैठी हुई गाय को नहीं कहेंगे। यहां लिखा ना, क्रिया का भेद होने पर एवं भूत नय, ऊपर क्या लिखा है, पर्वत को धारण करते समय नहीं कहा उसको, वो काल की बात नहीं उठाई थी उसने, अर्थ की बात उठाई थी। गिरिधर कभी भी कह सकता है शब्द, वो तो वहां जो हमने देखा था ना समभिरूढ़ में, उसको कभी भी गिरिधर कह सकते हैं, कभी भी मुरारी कह सकते हैं, एवं भूत जिस काल में वो गिरि को उठाता है उसी समय उसको गिरिधर कहेंगे। उस क्रिया से परिणत होना चाहिए, पर्याय को लेता है, पर वो पर्याय को बताने वाले शब्दों में ये कसरत चल रही है, ये सारे शब्द नहीं के भेद है। ये शब्दों के बारे में यहाँ जिसको कहेंगे कि ज्यादा चौखवट की जाती, ये सारे रुजु सूत्र नये ने वो ये सारे पर्यायार्थिक नहीं है हाँ, परंतु ये शब्द नये अर्थ नये और ज्ञान नये ऐसे भी उसमें भेद होते हैं ना। अभी क्या ये एक ही जो सात नये उसमें अलग टाइप से अलग द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक करेंगे तो पहले तीन द्रव्यार्थिक हुए बाद में पर्यायार्थिक हुए, उसे में अर्थ नये और शब्द नये अगर भेद कहने तो पहले सारे अर्थ नये हो जाते रुजु सूत्र तक और आगे के शब्द नये हो जाते। इस तरह से अलग अपेक्षा से भेद करने पर वो अलग अलग में घटित हो जाते हैं। देखो शंकाकर पूछते हैं, यहाँ क्या लिखा है, शब्द नय के अंतर्गत एवं भूत नय के अर्थ नय होने का विरोध है। ये इन्हें क्या कहना चाहते हैं, एवं भूत नय ये शब्द नय के अंदर हमने इंक्लूड किया है तो वो अर्थ नय नहीं हो सकता है कह रहे। फिर से क्रिया का भेद होने पर एवं भूत नय अर्थ का नहीं है, क्रिया भेदे न अर्थ भेद का एवं भूत, यानी क्रिया का भेद होने पर वो अर्थ का भी भेद हो जाता है, परंतु एवं भूत नय किसी एक क्रिया को स्वीकार करेगा ना, क्यों? देखो इसका अर्थ वो बात बाद में बताएंगे, यहाँ का वाक्य पहले पढ़ते हैं, क्योंकि शब्द नय के अंतर्गत एवं भूत, यानी एवं भूत नय किसमें अंतर्भूत है, किसमें इंक्लूडेड है, शब्द नय में, उसके अर्थ नय होने का विरोध है, यानी वो अर्थ नय नहीं है वो शब्द नय है। अभी उसका अर्थ नय किसको कहने है पूछ रहे, शंकाकार पूछते अर्थ नय कौन है, उसका समाधान, क्रिया और गुणादिक रूप अर्थगत भेद से अर्थ का भेद करने के कारण संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र नय अर्थ नय बात आई ना यहाँ पर, यानी पदार्थों के ही जो जुदे जुदे भेद है, यानी वो पदार्थों को विषय करता है, संग्रह नय व्यवहार नय और रुजु सूत्र नय अर्थ नय है, शेष नय शब्द के पीछे अर्थ के ग्रहण में तत्पर होने से शब्द नय है, यानी शब्दों के द्वारा वो अर्थों को ग्रहण कर रहे हैं। और संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र में तो डायरेक्ट पदार्थों को ग्रहण हो रहा है। जो एक को विषय न करे अर्थात भेद व अभेद दोनों को विषय करे वह नैगम नय है। वो ग म बराबर लिखना, नैगम ग पूरा होना चाहिए। इस न्याय से जो शुद्ध पर्यायार्थिक नय व अशुद्ध पर्यायार्थिक नय इन दोनों के विषय को ग्रहण करने वाला हो वह पर्यायार्थिक नैगम नय है। देखो नैगम नय उन्होंने पर्यायार्थिक में भी लगाया और द्रव्यार्थिक में भी लगाया, लेकिन एक सर्वथा एक कंपार्टमेंट नहीं कह सकते हम, अलग अलग अपेक्षाओं से उसमें अलग अलग भेद होते। हमने पहले द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो नए बात किएंगे, अब यहाँ क्या कह रहे हैं नैगम में क्या लेना, वो पर्यायार्थिक भी हो सकता है। पर्यायार्थिक ने दो पर्यायों को वो विषय कर रहा है, अशुद्ध और शुद्ध, और द्रव्यार्थिक भी नैगम नय हो सकता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक और अशुद्ध द्रव्यार्थिक इन दोनों नयों के विषय को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक नैगम नय है। नहीं नहीं पहले भाई बात आई थी ना शुद्ध पर्यायार्थी, बात आ गई कही थी। ये निकालो, नहीं नहीं पहले ये द्रव्यार्थिक में ये शुद्ध अशुद्ध की बात आई थी, निकालो जहां से द्रव्यार्थिक की बात शुरू हुई थी ना 163। मैंने पहले द्रव्यार्थिक की बात समझाई थी ना, ये पर्यायार्थिक की बात आप पूछ रहे। द्रव्यार्थिक में भी ऐसे ही लगाया, शुद्ध द्रव्यार्थिक अशुद्ध द्रव्यार्थिक और शुद्ध पर्यायार्थिक अशुद्ध पर्यायार्थिक। पर्यायार्थिक में जो रुजु सूत्र लिया शुद्ध पर्यायार्थिक में तो वर्तमान अकेली एक सिंगल पर्याय ले लेंगे, हाँ बोलो बोलो। वही ढूंढ रहे हैं 167 पेज, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक वहां से शुरू हो गए है ना, उसमें शुद्ध अशुद्ध की बात हम देखेंगे। उसमें हमने देखा था संग्रह नय में शुद्ध संग्रह नय और अशुद्ध संग्रह नय, देखो शुद्ध संग्रह द्रव्यार्थिक संग्रह 170 पेज पर लिखा था। शुद्ध संग्रह ने सत इतना ही ग्रहण किया था, वो शुद्ध संग्रह नहीं था। और आगे आगे वाले जो ये जीव है या जो ये संसारी जीव है उसमें एकत्व किया हमने, वो तो अशुद्ध होते चले जाएगा। यानी वो पर्यायार्थिक में भी देखो पेज नंबर 171 से शुरू हो जाता है, नीचे के दो लाइन पर्यायार्थिक ने रुजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत है और वर्तमान काल को विषय करता है। उसमें भी देखो शुद्ध अशुद्ध द्रव्यार्थिक है ना, व्यवहार नहीं पर्याय रूप कलंक से युक्त होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं है। जहाँ भेद को करते वो अशुद्ध पर्याय द्रव्यार्थिक में,
तो
पर्याय में शुद्ध अशुद्ध बात अलग है। द्रव्यार्थिक में शुद्ध अशुद्ध क्या है, सत इतना कहना ये शुद्ध द्रव्यार्थिक में है। और फिर ये छह द्रव्य के छह भेद करना या जीवों के अनेक संसारी, ये तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक नहीं, अशुद्ध द्रव्यार्थिक, उसका विषय तो द्रव्य ही है, भेद करना ही अशुद्धता है। संग्रह करने वाला वो संग्रह ने, और उसके भेद करना वो अशुद्ध, अशुद्धता हो गई उसकी। तो ये शुद्ध अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं हो गए। अब पर्यार्थिक नहीं की बात, रुजु सूत्र की बात होती है। रुजु सूत्र में भी एक वर्तमान, एक सिंगल पर्याय को विषय करने वाला वो शुद्ध रुजु सूत्र नहीं कहने में आता है, और लंबे काल को व्यंजन पर्याय को भी विषय करता है, इसे वो अशुद्ध पर्यार्थिक हो जाता है। अभी नैगम नय की बात चल रही है, अर्थ नय कौन है ये पहले पूछा था, तो अर्थ नय में ये बताया कि संग्रह व्यवहार और रुजु सूत्र नय वो अर्थ नय है, पदार्थ को विषय करते हैं, भले वो पर्याय रूप से पदार्थ को ही विषय करते हैं, और बाकी जो है वो शब्द नय है। शब्द नय तो समझते हैं, शब्द सम भीरुड़ एवं भूत वगैरह शब्द नय। अब नैगम रह गया, नैगम की बात कर रहे हैं, नैगम क्या अर्थ नय है क्या शब्द नय है, ये प्रश्न हो सकता है। तो कहते हैं कि नैगम किसको कहना, वो द्रव्यार्थिक है कि पर्यार्थिक नय का क्या है, तो कहते जो एक को विषय नहीं करता दोनों को विषय करता है वो नैगम है, न एकम वो नैगम। हाँ, तो उसमें वो नैगम ने पर्यायार्थिक भी होता है, क्योंकि दो पर्यायों को विषय करता है, शुद्ध और अशुद्ध, यानी शुद्ध द्रव्यार्थिक और शुद्ध अशुद्ध द्रव, सॉरी शुद्ध पर्यायार्थिक और अशुद्ध पर्यायार्थिक को विषय करता है, इसलिए पर्यायार्थिक नैगम हुआ। अब द्रव्यार्थिक नैगम कैसे कहेंगे, शुद्ध द्रव्यार्थिक और अशुद्ध द्रव्यार्थिक इन दोनों नयों के विषय को ग्रहण करने वाला, जैसे सत की अपेक्षा जो हमने कहा कि जीव द्रव्य उसमें ले लिया है सत में, तो वो शुद्ध द्रव्यार्थिक हुआ। उसी को भेद की अपेक्षा ये संसारी मुक्त ऐसा कहना, वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक हुआ, तो द्रव्यार्थिक नैगम हुआ। और ऐसा भी होगा ना कि द्रव्य और पर्याय दोनों को ग्रहण करने वाला, तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयों के विषय को ग्रहण करने वाला द्वंद्वज अर्थात द्रव्य पर्यायार्थिक नैगम नय है। इस प्रकार तीन नैगम है, हाँ वो व्यंजन पर्याय वगैरह भी लेते हैं ना उसके, ये वर्तमान पर्याय को छोड़कर अन्य भी उसमें इंक्लूड कर, वो अशुद्ध हो जाए। मात्र वर्तमान एक सिंगल समय की पर्याय को ग्रहण करना वो शुद्ध शुद्ध रुजु सूत्र नहीं कहते, स्थूल रूप से उसको तो अशुद्ध कहे जाते। अब द्रव्य और पर्याय दोनों को लेते हैं ना, जैसे पूर्व और भविष्य की पर्याय और द्रव्य उसको उसको साथ में ले लेते हैं, वो सारा क्या होगा, वो नैगम नहीं कहेंगे। शंकाकार पूछते कहीं पर नौ नए सुने जाते हैं, समाधान नहीं, क्योंकि नए इतने ही ऐसी संख्या के नियम का अभाव है, यहाँ उपयोगी गाथा। जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति नयवादा, जावदिया नयवादा तावदिया चेव होंति परसमया। जितने वचन मार्ग है उतने ही नयवाद है, यानी नयों के कथन है, जितने नयवाद है उतने ही पर समय है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि नयवाद यानी नयों के जितने कथन है, नयों से जो बात सही है उसको सर्वथा वैसा ही मानने वाले भी उतने ही मत होगी, उतने पर समय है। पर समय ने अन्य मत, मिथ्या मत, जिसको एकांत मत कहते हैं। ये जो नीचे वही बात बताया, द्रव्यार्थिक नैगम, पर्यार्थिक नैगम, द्रव्य पर्यार्थिक नैगम वगैरह, जो ऊपर हमने पढ़ा उसी की बात यहाँ जयधवला के आधार से बताई उन्होंने। अब आते 182 पृष्ठ पर। ये सभी ने अपने विषय को सर्वथा न मानने कारण समीचीन नहीं होते हैं, क्योंकि वे प्रतिपक्ष धर्म का निराकरण नहीं करते। क्या कहते हैं? नहीं किसको कहा हमने? प्रमाण से जाने हुए वस्तु के एक देश में वो वस्तु को उसको हम पूरी वस्तु को उस तरह देखना, उस अपेक्षा से देखना, परंतु वो क्या अन्य धर्मों का स्वीकार उसको है कि नहीं है, ये कहना चाहते हैं। सर्वथा निरपेक्ष नहीं होते, सर्वथा निरपेक्ष हो जाए तो वो मिथ्या नहीं कहलाते। यहाँ वही बात बताते, ये सभी नए अपने विषय को सर्वथा न मानने के कारण वो एकांत नहीं हो, समीचीन नहीं होते हैं, क्योंकि वो सापेक्ष है, क्योंकि वे प्रतिपक्ष धर्म का निराकरण नहीं करते। उसको गौण करके इसको मुख्य करके ग्रहण किया है, परंतु उसका निराकरण नहीं करते। किंतु ये ही जब दुराग्रह पूर्वक वस्तु स्वरूप का उदाहरण करने वाले होते हैं, तब मिथ्या नय कहे जाते। तो निरपेक्षा नया मिथ्या ऐसा कहते ना, क्योंकि ये ही जब नए जो नयों का जो कथन है वो दुराग्रह पूर्वक यानी सर्वथा वस्तु स्वरूप का उदाहरण करने वाले होते हैं, यानी वस्तु सर्वथा ऐसी ही है अगर अगर मानेंगे। ये तो कथन चित किसी अपेक्षा से बता रहे हैं, नए तो उस धर्म की अपेक्षा से वस्तु को उस रूप देख रही है, परंतु सर्वथा ऐसा ही मानेंगे हम तो उसको वो मिथ्या नहीं कहेंगे, क्योंकि वे प्रतिपक्ष का निराकरण करने की मुख्यता से प्रवृत्त होते हैं। यानी उनका कार्य क्या है कि प्रतिपक्ष का निराकरण ही कर रहे थे। जैसे द्रव्य सर्वथा नित्य है, कूटस्थ है, इसे मानने वाले क्या होते, वो तो मिथ्यावाद हो गया उनका। यहाँ उपयोगी श्लोक बहुत सारे, हम एक एक को पढ़ेंगे। 59 को पढ़ते यथैक कमकार कमर्थ सिद्धये समीक्ष शेषम स्वसहाय कारकम तथैव सामान्य विशेष मातृका नयास्तवेष्टा गुण मुख्य कल्पतः। उसका अर्थ देखते हैं। जिस प्रकार एक कारक शेष को अपना सहायक कारक मान करके प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है, उसी प्रकार सामान्य व विशेष धर्मों से उत्पन्न नए आपको मुख्य और गौण की विवक्षा से इष्ट है। देखो जब कारक की बात होती है ना, तो कोई क्रिया में तो छह कारक लगते हैं, किसने किया, किसके लिए किया, किसमें से किया वगैरह, तो एक को दूसरे की अपेक्षा है वहां पर कार्य में, तो सभी एक दूसरे के, पर किसी एक की मुख्यता से हम बात करेंगे। वैसे ही यहाँ पर सामान्य और विशेष जो धर्म है, सामान्य और विशेष धर्मों से उत्पन्न नए, ये कभी सामान्य को मुख्य करेंगे, कभी विशेष को मुख्य करेंगे, उसमें तो मुख्य और गौणता की अपेक्षा है। अन्य को गौण करके अपना कथन कर रहे हैं, अन्य का निराकरण करके नहीं। अगर अन्य का निराकरण हो जाए तो एकांत मत हो जाएगा, वो वस्तु सिद्ध नहीं होगी उससे। हम रुकते हैं यहाँ, क्योंकि ये तो होने वाले नहीं है तीन श्लोक, तीनों ही श्लोक उपयोगी श्लोक वहां से ही लें, 59 से फिर दोबारा लेंगे हम, क्योंकि अब मिलेंगे हम 24 को सुबह। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं